जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद श्री अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद श्री अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। ग्रंथराज श्री चैतन्य चरितामृत मध्यलीला अध्याय 9, अध्याय का नाम है श्री चैतन्य महाप्रभु की तीर्थ यात्राएं और प्रयाण संख्या 336 से 347 तक। तो 347वां प्यार श्वेत पट में लिखा हुआ है, आप लोग मेरे पीछे बोलेंगे, लेकिन इसके पहले की प्यारे में पढ़ के सुना रहा हूँ। जय पथे पूर्वे प्रभु कैला आगमन से पथे चलिला देखी सर्व वैष्णवगण। श्री चैतन्य महाप्रभु जिस रास्ते से पहले विद्यानगर आए थे उसी से लौटे और सारे वैष्णवजन रास्ते में उन्हें फिर से मिले। तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि विद्यानगर जिस रास्ते से पहले विद्यानगर आए थे, मतलब जगन्नाथपुरी से, तो जगन्नाथपुरी से विद्यानगर आए थे चैतन्य महाप्रभु, अब विद्यानगर से वापस उसी रास्ते जा रहे हैं, है ना। तो जितने वैष्णव मिले थे उनको पहले इस बार भी मिले लौटते समय, कि वही रास्ता था। जहाँ जाए लोग उठे हरि ध्वनि करी देखी आनंद ते मन हैला गौर हरी। जहाँ कहीं भी श्री चैतन्य महाप्रभु जाते श्री हरि के नाम का उच्चारण होता ये देखकर महाप्रभु अत्यंत प्रसन्न हुए। अलालनाथ आसी कृष्णादास पठाइल नित्यानंद आदि जय गणे बोलाइल। अलालनाथ पहुंचकर महाप्रभु ने अपने सहायक कृष्णदास को नित्यानंद प्रभु तथा अन्य निजी संगियों को बुलाने के उद्देश्य से आगे भेज दिया। अलालनाथ तक चैतन्य महाप्रभु आए तो जगन्नाथपुरी से चले थे, तो जगन्नाथपुरी के पहले अलालनाथ स्थान है, तो चैतन्य महाप्रभु अलालनाथ तक तो आए और अब जगन्नाथपुरी नहीं जा रहे हैं, बल्कि जगन्नाथपुरी भेजा किसको, अपने सहायक कृष्णदास को। तो ये कृष्णदास उनके साथ गए थे तो उसको भेजा, क्यों भेजा, कि जगन्नाथपुरी से नित्यानंद प्रभु और जितने भी भक्त हैं सबको बुला के लाए। ये प्रेम का जो है संबंध है कि जब उनमें प्रेम है तो चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी क्यों आए, और जब चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी आए तब उनको पता चले कि चैतन्य महाप्रभु आ गए, उचित नहीं है। तो चैतन्य महाप्रभु अलालनाथ में ठहर गए हैं और अपने सहायक को भेजा है सूचना देने के लिए कि आए हैं, और वो लोग आए क्योंकि उनकी खुशी होती है चैतन्य महाप्रभु का वो स्वागत करें, तो खुद भी चल करके आए। चैतन्य महाप्रभु कितना चले दक्षिण भारत की यात्रा में, 6 साल तक दक्षिण भारत की यात्रा चल के आए, है ना। तो अब उन भक्तों को भी आना चाहिए ना चल करके, तो अलालनाथ तक जो है जगन्नाथपुरी से सब भक्त लोग आएंगे चैतन्य महाप्रभु को जो है लेने के लिए, है ना, रिसीव करने के लिए, है ना, लेने के लिए। प्रभुर आगमन सुने नित्यानंद राय उठिया चलेला प्रेम थे है ना ही पाए। नित्यानंद प्रभु ने श्री चैतन्य महाप्रभु के आगमन की खबर सुनी क्यों ही तुरंत उठकर उन्हें मिलने चल दिए, महान भाव के कारण अत्यंत अधीर हो उठे, बहुत अधीर। 6 साल तक इनको क्या प्राप्त हुआ है, वियोग, चैतन्य महाप्रभु का वियोग प्राप्त हुआ है, है ना। तो नित्यानंद प्रभु प्रेम थे है ना ही पाए, तो प्रेम का जो है प्रेम के कारण धैर्य नहीं रख पाए, तो प्रेम के कारण व्यक्ति क्या हो जाता है, अधीर हो जाता है, धैर्य नहीं रहता।
जगदानंद दामोदर पंडित मुकुंद नाचिया चालीला देहे नाधारे आनंद।
आनंद के मारे नित्यानंद राय, जगदानंद, दामोदर पंडित और मुकुंद भाव विभोर होठे रास्ते भर नाचते हुए महाप्रभु से मिलने गए, नृत्य करते हुए जा रहे हैं, खुशी मना रहे हैं चैतन्य महाप्रभु आए हैं, खुशी मना रहे हैं।
गोपीनाथाचार्य चलीला आनंद तहया प्रभु रे में लीला सबे पथे लाग पाया।
गोपीनाथ आचार्य भी अत्यंत प्रसन्न मुद्रा में गए, वे सब महाप्रभु से मिलने गए और अंत में रास्ते में ही उन सब की भेंट हो गई। अलालना तक नहीं पहुंच पाए, रास्ते में भेंट हो गई, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु धैर्य नहीं रख पा रहे हैं, अलालनाथ रुक नहीं सकते हैं, तो वो भी चले आ रहे हैं, तो बीच में ही भेंट हो गई।
प्रभु प्रेमा वैसे साबाए कैला आलिंगन, प्रेमा वैसे साबे करे आनंद क्रंदन।
महाप्रभु प्रेम प्रेम के वश में हो गए, प्रेम के आवेश में, प्रेमावेश सबाए प्रेम के आवेश में सबका आलिंगन किया, और प्रेमावेश सबे करे आनंद क्रंदन, प्रेम के आवेश में सब आनंद का क्रंदन कर रहे हैं, आनंद से रो रहे हैं।
सार्वभौम भट्टाचार्य आनंदे चलीला समुद्रे रति रे आसी प्रभु रे मिलीला।
सार्वभौम भट्टाचार्य भी परम आनंदित होकर महाप्रभु से मिलने गए और उनकी भेंट समुद्र के किनारे हो गए। तो सार्वभौम भट्टाचार्य देर से चले हैं, तो और निकट में भेंट हुई, तब तक सब लोग चैतन्य महाप्रभु के साथ में और जितने नित्यानंद प्रभु सब लोग आ ही रहे थे, तो समुद्र के किनारे भेंट हो गई।
सार्वभौम महाप्रभुर पड़ीला चरणे प्रभु तारे उठैया कैला आलिंगने।
सार्वभौम भट्टाचार्य महाप्रभु के चरण कमलों पर गिर पड़े और महाप्रभु ने उन्हें उठाकर उनका आलिंगन किया। तो सार्वभौम भट्टाचार्य बहुत भाग्यशाली है ना, चैतन्य महाप्रभु चरणों में गिरे और चैतन्य महाप्रभु उठा करके उनको आलिंगन कर रहे हैं।
प्रेमावेश सार्वभौम करीला रोदने सभा संग आईला प्रभु ईश्वर दर्शने।
सार्वभौम भट्टाचार्य अत्यधिक प्रेमावेश में रोने लगे, तब महाप्रभु सबके साथ जगन्नाथ मंदिर गए। ये प्रेम में रोना आता है, और उस समय पता है कोई नहीं था, मीडिया नहीं था, कोई संचार का तरीका नहीं था, चिट्ठी भी नहीं भेज सकते कहीं, आपने डाक विभाग भी नहीं था कि चिट्ठी के द्वारा समाचार अपना दें या समाचार किसी का लें है? और इतनी लंबी यात्रा में गए, दक्षिण भारत की 6 साल की यात्रा में, और कोई व्यक्ति अगर बीच में ही रास्ता भूल जाए, वापस ना आ पाए या शरीर ही छोड़ दे, तो कोई समाचार ही नहीं मिलेगा। कोई व्यक्ति अगर अपने घर से बाहर जाए है ना, मोबाइल तो था ही नहीं, अभी तो मोबाइल है, तो मोबाइल से समाचार देते हैं, मैसेज भेज देते हैं, फ़ोन कर देते हैं, उस टाइम तो मोबाइल भी नहीं था और संचार का कोई माध्यम नहीं था, डाक विभाग ही नहीं था। अभी तो 10 साल 50 साल पहले डाक विभाग से भी चिट्ठियां भेज देते थे, तो चिट्ठियां भी नहीं भेज सकते कहीं है ना। अगर कहीं किसी का समाचार पता लगाना तो व्यक्ति को पैदल भेजना पड़ेगा, पैदल चल करके ही वो जाएगा किसी का समाचार प्राप्त करने के लिए और पैदल वापस आएगा, सोचिए। तो 6 साल के बाद चैतन्य महाप्रभु आए वापस, तो क्यों नहीं रोएंगे सब लोग, क्यों नहीं रोएंगे। 6 साल के बीच में कोई समाचार नहीं मिला, और इतना प्रेम चैतन्य महाप्रभु के प्रति विरह में है, और 6 साल तक कोई समाचार नहीं मिला, कैसा लगेगा। वो 6 साल जो है उनके लिए 600 साल जैसा, 6 साल जो है उनके लिए कितना हो गया, 600 साल या 6000 साल जैसा हो गया। कोई समाचार नहीं है, कोई संकेत नहीं कि कहाँ पर हैं, क्या उनको जो है असुविधा हो रही है, क्या सुविधा मिल रही है, कितनी कठिनाई आ रही है उनके सामने, कोई समाचार नहीं। कैसा लगेगा, कैसा लगेगा, बहुत चिंता है ना, तो रो रहे हैं है? और महाप्रभु सबके साथ जगन्नाथ मंदिर गए। अब जगन्नाथ जी का दर्शन करने गए, सबके साथ गए। भगवान जगन्नाथ का दर्शन करते समय प्रेमावेश के कारण कंपन स्वेद अश्रु पुलक से महाप्रभु का शरीर आप्लावित होता।
जगन्नाथ दर्शन प्रेमावेश कैला कंप स्वेद पुलका सूते शरीर भासीला।
अब मेरे पीछे आप लोग बोले,
बहु नृत्य गीत कैला प्रेमाविष्ट हैया,
पांडा पाल आयल सबे माला प्रसाद लैया बहु नृत्य गीत कैला प्रेमा विष्ट हैया पांडा पाल आयल सबे माला प्रसाद लैया बोलिए बोलो शब्दार्थ बहु बहुत नृत्य गीत नृत्यतः कीर्तन कैला किया प्रेम आविष्ट प्रेमावेश में हैया होकर पांडा पाल पुजारी और सेवक आयल आए सबे सभी माला प्रसाद माला और जगन्नाथ का प्रसाद लैया देने के लिए अनुवाद मेरे पीछे बोलिए श्री चैतन्य महाप्रभु प्रेमावेश के कारण नाचने लगे और कीर्तन करने लगे। उस समय सारे पांडे तथा पुजारी उन्हें भगवान जगन्नाथ का प्रसाद तथा माला देने आए। तो 6 साल के बाद जो है जब आए और सबके जीवन के जो केंद्र हैं है ना वो आए हैं है ना तो कैसा लगता है ना। तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं श्रील प्रभुपाद की जय। भगवान जगन्नाथ के सेवा में लगे पुजारी पांडा या पंडित कहलाते हैं है ना। तो प्रभुपाद बता रहे हैं पांडा और पाल ये दो प्रकार के जो सेवक हैं जगन्नाथ जी के। तो पांडा या पंडा बोलते हैं या पंडित बोलते हैं जो भी है पंडा तो वो कौन है जो जगन्नाथ जी की सेवा में लगे हैं अर्चा विग्रह की सेवा करते हैं। तो पांडा पांडा पंडा पंडित ऐसे पंडित से ही बना है। अब पंडा बोलते हैं फिर पांडा बोलते हैं है ना। और ये ब्राह्मण होते हैं मंदिर के बाहरी मामलों की देख रेख करने वाले पाल कहलाते हैं। पाल पाल कौन है बाहरी मामलों की देखरेख करने वाले व्यवस्था करने वाले पाल कहलाते हैं। चैतन्य महाप्रभु को मिलने के लिए पुजारी और पाल दोनों ही आए। तो यहाँ प्रभुपाद का तात्पर्य समाप्त हुआ। तो इसमें कई बिंदु हैं जिन पर चर्चा की जा सकती है तो हमारे पास इतना समय नहीं है क्योंकि बहुत नृत्य किया और गीत किया और प्रेम आविष्ट में होकर के हुए। तो प्रेम आविष्ट की जो जो शब्द प्रयोग है इस पर हम विचार करेंगे। प्रेम आविष्ट है तो चैतन्य महाप्रभु क्या है प्रेम में आविष्ट है। और प्रेम आविष्ट जो है ये शब्द कई बार आया प्रेम आवेश से कैला इसकी पिछले में भी प्रेमा प्रेम के आवेश में है ना। और फिर इसके 342वां प्यार है इसमें भी दो बार प्रेम आवेश है। तो प्रेम के आवेश में श्री चैतन्य सबका आलिंगन किया और प्रेम आवेश में सब आनंद पूर्वक क्रंदन कर रहे हैं। तो प्रेम आविष्ट और प्रेम आवेश ये सब जो है कई बार आए हैं, तो इनकी हम चर्चा करेंगे कि प्रेम आविष्ट का मतलब क्या है। प्रेम में जो आविष्ट हो जाए, है ना, आवेश का मतलब होता है बिजली का जो होता है ना आवेश, उसको इलेक्ट्रिक चार्ज अंग्रेजी में बोलते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज, जो विद्युत आवेश हिंदी में बोलते हैं विद्युत आवेश, है ना। तो प्रेम के आवेश में है चैतन्य महाप्रभु। तो प्रेम का आवेश का मतलब क्या है कि उनके शरीर में प्रेम का जो है आवेश है, यानी बिजली का जैसे चार्ज होता है ना, प्रेम का चार्ज है, जैसे तांबे में जब विद्युत आवेश होता है तब ये तांबे की तरह काम नहीं करता है, आप छुएंगे तो क्या करेगा, ये करंट लगेगा, है ना। क्यों? क्योंकि अब ये क्या हो गया, ये विद्युत आवेश है, ये तांबे का तार नहीं है ना। उसी प्रकार से अर्जुन भी कृपया आविष्टो तम तथा कृपया आविष्टम, कृपा करुणा में आवेश हैं अर्जुन, करुणा में आवेश हैं, तो उसमें भी आवेश है करुणा का, है ना। या कृपाविष्ट जैसे प्रभुपाद को कहते हैं कृपा मूर्ति, तो कृपा की मूर्ति, कृपा का आवेश है उनके अंदर, तो गुरु को जो है कृपा मूर्ति कहा जाता है, प्रभुपाद को कृपा मूर्ति, तो कृपा का आवेश है उनके शरीर में, कृपा ही कृपा है, है ना। तो उनकी संगति से आपको क्या मिलेगा, कृपा मिलेगा, आप छुएंगे तो कृपा का करंट लगेगा, है ना। तो गुरु को जो है सामान्य मनुष्य नहीं कहा जाता है, जैसे कि तांबे के तार में जो है अब विद्युत आवेश हो तो अब तांबे का तार नहीं है, अब ये क्या है, ये विद्युत हो गया। उसी प्रकार से गुरु के शरीर को भी भौतिक नहीं माना जाता है, क्योंकि उसमें क्या है, कृपा का आवेश है, तो कृपा मूर्ति, इनको कृपा मूर्ति बोलते हैं, कृपा की मूर्ति है ना। उसी प्रकार से चैतन्य महाप्रभु प्रेमाविष्ट है, तो उनके शरीर में प्रेम है, और आलिंगन करें तो उसको प्रेम मिल जाए, करंट, करंट में क्या है, छूने से करंट लगता है, है ना। तो उनका आलिंगन जो है ये क्या है, प्रेम का करंट देता है, है ना। तो उन्होंने जो है संसार में जो कृष्ण प्रेम है वो मतलब बहुत आसानी से दे दिया, जो कि हमें भक्ति साधना से हमें प्रेम के धरातल को प्राप्त करने में कई जन्म भी लग सकते हैं। वो जो है चैतन्य महाप्रभु केवल स्पर्श करके, कोई स्पर्श करे तो उसको प्रेम का जो है प्रेम की प्राप्ति हो जाती थी। दक्षिण भारत में उन्होंने इसी प्रकार से प्रेम दिया लोगों को, क्योंकि वो कीर्तन कर रहे हैं, एक व्यक्ति उनको मिला तो उसका उन्होंने आलिंगन किया, अब प्रेम का आवेश है तो प्रेम उसको मिल गया, अब प्रेम उसको मिल गया तो वो भी जो है कीर्तन करने लगा, नृत्य करने। अब वो अपने गाँव में गया तो वहाँ गाँव के जो लोग हैं तो उनको उसने आलिंगन किया, तो उन गाँव को जो है सबको प्रेम दे दिया। और वहाँ पर कोई बाहरी गांव को कोई व्यक्ति आया था, अपने गांव में गया तो उसने अपने गांव में सबको जो है प्रेम दे दिया। तो मतलब इतना चैतन्य महाप्रभु ने प्रेम का वितरण किया कि उसकी जो है कोई संख्या नहीं। हम लोगों को तो प्रेम की प्राप्ति होगी, कब होगी, हाँ हम लोग तो लगे हुए हैं साधु संग, श्रद्धा साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा रुचि आसक्ति भाव, फिर प्रेम है, तो कहाँ प्रेम कितना दूर है, और कहाँ प्रेम जो है चैतन्य महाप्रभु ऐसे देते हैं, किसी का भी आलिंगन करें तो प्रेम देते हैं। तो इस तरह से चैतन्य महाप्रभु का दक्षिण भारत में जो भ्रमण है उसका वर्णन ऐसा है चैतन्य चरितम में आता है कि वो ऐसे प्रेम मतलब देते हैं। तो गांव वालों को तो प्रेम उन्होंने दे दिया है? और कोई दूसरे गाँव का कोई व्यक्ति आया तो उसका भी आलिंगन किया तो उसको प्रेम मिल गया, वो अपने गांव में गया तो उसने जिनका आलिंगन किया उनको प्रेम मिल गया। जैसे मतलब चैतन्य महाप्रभु सब जगह गए भी नहीं, सभी गांव में गए भी नहीं, रास्ते में जो जो गांव मिले वहां उन्होंने किसी को प्रेम दिया, वो अपने गांव में जाता है, फिर वहां उस गांव में कोई दूसरे गांव का आया उसको प्रेम मिला तो वो अपने गांव में जाता है। तो इस तरह से कितनी मतलब संख्या में भगवान ने प्रेम वितरण किया है ना। तो ये जो प्रेमाविष्ट, अब एक घटना मैं पढ़ के सुनाना चाहता हूँ, बहुत ही रोचक घटना है कि चैतन्य महाप्रभु जब प्रेम के आवेश में समुद्र में कूद गए तो बहुत आश्चर्य है कि एक मछुआरे को प्रेम मिल गया, और वो तो जानता नहीं कि प्रेम क्या होता है, तो वो तो सोचता है कि मुझे भूत लग गया तो किसी व्यक्ति जिसकी योग्यता नहीं है प्राप्त करने की और प्रेम मिल गया उसको, है ना, तो वो क्या समझेगा? जैसे किसी की व्यक्ति समझता नहीं है कि 10,000 का नोट या जो है मान लो करोड़ों रुपए का एक जो है हीरा मिल जाए, और वो जो है समझे कि ये क्या है, वो सोचता है ये क्या है, कहाँ से आ गया, मुझे क्यों मिल गया, वो इसको भार समझ रहा है, मतलब कि करोड़ों का हीरा है। ऐसे प्रेम भगवान किसी को देते हैं, वो योग्य तो है नहीं, और प्रेम मिल गया तो वो सोचता है क्या हो गया मुझे, मैं तो पागल हो गया, तो वो सोचता है मैं तो पागल हो गया। तो यही जो है इसमें घटना है। अंत लीला का अध्याय 18 है। आई टोटा मंदिर के निकट भ्रमण करते हुए चैतन्य महापुरुष ऐसा समुद्र देखा तो यमुना नदी समझ करके जल में कूद पड़े, और उनके साथ में जितने भक्त थे वो देख भी नहीं पाए, वो इतनी तेजी से कूदे कोई देख नहीं पाया, और समुद्र में गिरती चेतना चली गई और समझ नहीं सके कि वो कहाँ हैं। लहरों के नीचे डूब जाते हैं, कभी ऊपर तैरते हैं, और लहरें इधर उधर बहा ले गई, जैसे सूखे काट का लट्ठा उनको बहा ले गई। अब सोचो कितना संकट है, कितने बड़े संकट में है। लहरें कभी महाप्रभु को डुबो देती, कभी ऊपर तैराए रखती, इस तरह से कोणार्क मंदिर की ओर बहा ले गई। और स्वरूप दामोदर इत्यादि सारे भक्तों ने जब चैतन्य महाप्रभु नहीं देखा तो चकित होकर पूछते हुए खोजने लगे कि महाप्रभु कहाँ चले गए, इतनी तेजी से भागे थे कोई देख नहीं पाया, उनके कहाँ चले गए, इस संशय में सब लोग पड़े हुए हैं। और जगन्नाथ मंदिर गए हैं या किसी उद्यान में गिर पड़े हैं, अब बड़ी आशंकाएं हो रही हैं। जगन्नाथ मंदिर में चले गए, किसी उद्यान में गिर पड़े हैं, हो सकता है गुंडीचा मंदिर में गए हो, या नरेंद्र सरोवर में गए हो, या चटक पर्वत में गए हो, या कोणार्क मंदिर में गए हो। इस तरह बातें करते करते महाप्रभु खोजने के लिए इधर उधर घूम रहे हैं सब लोग। अंत में अनेक लोगों समेत समुद्र के किनारे आए। महाप्रभु की खोज करते करते रात बीत गई, पूरी रात बीत गई। अब निश्चय किया कि चैतन्य महाप्रभु अंतर्धान हो गए। क्या लगा सबको? अंतर्धान हो गए, मतलब अपने धाम चले गए, लीलाएं समाप्त कर दी उन्होंने, चले गए, है ना। महाप्रभु के वियोग में सबको ऐसा लग रहा था मानो प्राण निकल चुके हैं। भक्तों ने निष्कर्ष निकाला अवश्य कोई दुर्घटना हुई है, और कुछ वो सोच नहीं पाते, कोई दुर्घटना हुई। कोई संबंधी घनिष्ठ मित्र अपने प्रिय के अनिष्ट के प्रति सदैव भयभीत रहता है। प्रेम में ऐसा भय होता ही, हालांकि भगवान है लेकिन प्रेम में ऐसा भय रहता है। जब समुद्र के किनारे आए तो परस्पर विचार विमर्श किया, और चैतन्य महाप्रभु को ढूंढने कुछ लोग चटक पर्वत गए। स्वरूप दामोदर अन्यों के साथ महाप्रभु को समुद्र के किनारे अथवा जल में ढूंढते हुए पूरब की ओर बढ़े। सारे लोग खिन्नता में बेहबल थे, अचेत जैसे हो गए, किंतु प्रेमवश खोजने के लिए इधर उधर घूम रहे थे। समुद्र तट से जाते हुए सबों ने एक मछुआरे को आते देखा। अब सुनिए बड़े ध्यान से। एक मछुआरे को आते देखा, अपने कंधे में जाल लिए था, हंसता था, रोता था, नाचता था, और हरि हरि का उच्चारण किया जाता था। अब ये जो है बड़ी आश्चर्य की घटना है। वो मछुआरा जो है जाल लिए है, मछली पकड़ने का जाल लिए है, अपने कंधे में रखे है, और हंस रहा है, कभी रोता है, नाचता है, गाता है, हरि हरि बोल रहा है। मछुआरे के कार्यकलाप को देखकर सारे लोग आश्चर्यचकित हो गए। स्वरूप दामोदर ने उससे समाचार पूछा कि क्या बात है, तुम्हें क्या हो गया? मछुआरे से पूछा क्या हो गया, तुम ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हो, क्या तुमने इधर किसी व्यक्ति को देखा है, तुम्हारे इस व्यवहार का क्या कारण है, हमसे बताओ क्या हुआ। मछुआरे ने उत्तर दिया, यहाँ एक भी व्यक्ति को नहीं देखा मैंने, किंतु जल में जाल डालते समय एक शव को पकड़ा है। मेरे जाल में एक मुर्दा आ गया है, एक शव आ गया है जाल में। मैंने ये सोचकर कि कोई बड़ी मछली है, बड़ी सावधानी से उठाया, जब मैंने देखा कि शव है तो मेरे मन बड़ा भय, मुझे बड़ा भय लगा। जब मैं जाल छुड़ाने का प्रयास कर रहा था तब मैंने उस शरीर का स्पर्श किया, जैसे स्पर्श किया एक भूत मेरे हृदय में प्रविष्ट हो गया। वो डर रहा, लेकिन वो तो प्रेम के आवेश में है ना, करंट जो है लगेगा, छुए तो करंट लगेगा, और उसको करंट लग गया, और उसको प्रेम मिल गया है, ये वो नहीं समझ रहा है, कहता मेरे शरीर में भूत प्रवेश, जैसे छुआ उस मुर्दे को तो मेरे शरीर में जो है भूत हृदय भूत प्रवेश कर गया। मैं भय से कांप उठा, मेरी आंखों से आंसू बहने लगे, वाणी अवरुद्ध होने लगी, मेरे शरीर के रोम खड़े हो गए। मैं नहीं जानता वो सब किसी मृत ब्राह्मण का भूत था या किसी सामान्य व्यक्ति का था। जो इसको देखता है उसके शरीर में प्रवेश कर जाता है, वो देखने से ही प्रवेश कर जाता है। बड़ा खतरनाक भूत है। इस भूत का शरीर बहुत लंबा, 5-7 हाथ लंबा है। ये प्रेम में उनका जो है ये सब जोड़े खुल जाते थे, है ना, सब जोड़ जोड़ अलग अलग हो जाते हैं शरीर के, हाथ इतने लंबे हो जाते हैं, पैर इतने लंबे हो जाते हैं। ये भूत है वो 5-7 हाथ लंबा और भुजाएं टांगे 3-3 हाथ लंबी हैं, इतना जो है शरीर लंबा हो गया है। चमड़े के नीचे के इसके सारे हड्डियों के जोड़ अलग अलग हो गए हैं। अब जैसे यहाँ हड्डी का जोड़ है ना, इतना अलग हो जाता है कि मांस जो है मतलब यहाँ रहता है और हाथ बहुत लंबा हो गया, हड्डी के जोड़ एकदम अलग हो चुके हैं, बहुत दूर हो चुके हैं हड्डी के जोड़, और पूरी तरह ढीले हो चुके हैं, कोई इसे देख नहीं सकता और देखने पर जिंदा नहीं रह सकता, वो ऐसा खतरनाक भूत है। उस भूत ने सबका रूप धारण कर रखा है, वो भूत जिंदा है लेकिन वो सबका रूप धारण किए है मुर्दा जैसा, और आंखें खुली हुई हैं और गौं गौं का शब्द करता है, अचेत पड़ा अचेत रहता है, बस मुंह से क्या होता है गौं गौं की आवाज निकलती है। अब चैतन्य महाप्रभु रात भर तो समुद्र में रहे, पानी में रहे। मैंने उस भूत को प्रत्यक्ष देखा है, वो मेरे चारों ओर घूम रहा है, किंतु यदि मैं मर जाऊं तो मेरी पत्नी बच्चों की देखभाल कौन करेगा, वो कह रहा है। उस भूत के बारे में कुछ कह पाना सचमुच बहुत कठिन है, किंतु मैं कोई ओझा को ढूंढने जा रहा हूं और उससे पूछूंगा कि क्या वो मुझे इससे छुटकारा दिला सकता है इस भूत से। मैं रात में एकांत स्थानों में मछली मारता फिरता हूं। मछली मारने वाला कितना पापी है, और उसको भी जो है प्रेम प्राप्त हो गया है, अब वो क्या समझे ये क्या है। फिर भी भूत प्रेत मुझे छू नहीं पाते क्योंकि मैं नरसिंह देव की स्तुति का स्मरण करता हूं, तो नरसिंह मंदिर का जाकर तो भूत प्रेत मुझे नहीं लगते, ये भूत बड़ा शक्तिशाली है। किंतु ये भूत मेरे द्वारा नरसिंह मंत्र का उच्चारण करने पर दोनों शक्ति से मुझे पछाड़ देता है। नरसिंह मंत्र से भी काम नहीं चलता है, दोनों शक्ति से मुझे पछाड़ देता है। इस भूत को देखते ही मेरे मन में बहुत भय उठने लगता है। आप वहां मत जाओ, अब सबसे बोल रहा है मछुआरा कि वहां मत जाओ, जिनको ढूंढ रहे जिनको ढूंढ रहे हैं उन्हीं को कह रहा है कि मत जाओ वहां, उन उस भूत को नहीं देखना, यदि आप जाएंगे तो वो भूत आप सबको पकड़ लेगा, सबको पकड़ लेगा। ये सुनकर स्वरूप दामोदर इस बात की पूरी हकीकत समझ गए, पूरी बात समझ गए। स्वरूप दामोदर बहुत विद्वान है, समझ गए, है ना। अब ये मूर्ख है, ये लायक तो है नहीं, किसी नालायक है, तो इसको क्या पता कि इसको किसने प्रेम प्राप्त हो गया है, तो ये सोच रहा है मुझे भूत लग गया है। वे मछुआरे से मधुर वाणी में बोले, आप स्वरूप दामोदर जानते हैं ना कि किसके साथ कैसे बोलना चाहिए, है ना, अगर वो बोलेंगे तो समझेगा नहीं वो ये क्या बोल रहे हैं, इसलिए उस तरह से नहीं बोलना है जिस तरह से है? मतलब वो है वास्तविकता, ऐसे नहीं बोलना है। उन्होंने कहा मैं एक प्रसिद्ध ओझा हूँ। स्वरूप दामोदर बोले मैं एक प्रसिद्ध ओझा हूँ। अब ओझा तो थोड़ी है वो, ये बोले मैं एक प्रसिद्ध ओझा हूँ और मैं जानता हूँ तुम्हें इस भूत से कैसे छुड़ाना है। तब उन्होंने कुछ मंत्र पढ़े, मछुआरे के सिर पर अपना हाथ रखा, उसको दिखा है कि मैं तुम्हारा भूत उतार रहा हूं। उन्होंने इस मछुआरे को 3 थप्पड़ लगाए 3 थप्पड़ लगाए और कहा अब भूत भाग गया है, डरो मत, ये कहकर उसने मछुआरे को सांत्वना दी। तो ये है मतलब बुद्धि है कि समय स्थान परिस्थिति के अनुसार क्या बोलना है क्या करना है, है ना। तो भूत तो लगा नहीं उसको है, लेकिन उसको तो पूरा विश्वास है मुझे भूत लगा है। तो उसको 3 थप्पड़ मारे और कह करके मछुआरे को सांत्वना दी। मछुआरा उन्मत्त प्रेम से प्रभावित था किंतु भयभीत भी था, इस तरह वो दुगना चंचल हो गया था, किंतु अब उसका भय समित हो चुका था, अब कुछ सामान्य हो गया, अब उसको लगा कि हाँ भूत उतर गया मेरा है? तो सामान्य हो गया। स्वरूप दामोदर ने मछुआरे से कहा जिसे तुम भूत मान रहे हो वास्तव में भूत नहीं अपितु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु हैं। अब जब सामान्य हो गया तब बताया कि भूत नहीं है ना, तुम्हें भूत लगा है, है? तुम जिसको भूत समझ रहे हो वो कौन है? भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम चैतन्य महाप्रभु है। स्वरूप कहे जा रे तुम्हें कर भूत ज्ञान, भूत नये ते हो कृष्ण चैतन्य भगवान। प्रेम अभिष के कारण महाप्रभु समुद्र में गिर पड़े और तुमने उन्हें अपने जाल में पकड़कर उनकी रक्षा की है। तुमने बहुत बड़ी सेवा की है। क्या सेवा की है? हरि बोल। नींद आ रही है? अपने जाल में तुमने उनको पकड़ा है तो तुमने उनकी रक्षा की है। उनके स्पर्श मात्र से तुम्हारा सुप्त कृष्ण प्रेम जाग उठा है। तो सबके हृदय में सुप्त प्रेम है ना? नित्य सिद्ध है कृष्ण प्रेम साध्य कबू नए श्रवणादि शुद्ध चित्ते कराए उदय। तो जगाना है केवल। कृष्ण प्रेम तो सुप्त पड़ा हुआ है सबके हृदय में, तो तुम्हारे में सुप्त कृष्ण प्रेम जो है जाग गया। कैसे जागा? तुमने उनको छुआ तो कृष्ण प्रेम जाग उठा। तो भगवान चैतन्य जो है मतलब कितनी उनकी जो है शक्ति है, वो प्रेम उन्होंने ऐसे दिया। सोचिए किसी भी अवतार में ऐसा नहीं हुआ है, किसी भी अवतार में ऐसा नहीं हुआ। इस में जो है उन्होंने इतना मतलब सोचिए कि कौन योग्य है कौन योग्य नहीं है, कौन पात्र है कौन पात्र नहीं है, ऐसे कृष्ण प्रेम दिया है ना। सुरूप दामोदर कहते हैं किंतु तुमने उन्हें भूत मान लिया था इसलिए तुम उनसे इतना अधिक डरे हुए थे। अब चूंकि तुम्हारा भय जा चुका है, तुम्हारा मन शांत है, अतः मुझे दिखलाओ कि वे कहाँ हैं। देखो कितना सुरूप दामोदर ने अपना जो है पूर्ण व्यवहार किया समय परिस्थिति अनुसार। कैसे पहले क्या बोलना था तो उन्होंने वही बोला जो पहले बोलना चाहिए, और बाद में क्या बोलना चाहिए वही बोला जो बाद में बोलना चाहिए, है ना। तो पहले अगर बोलते तो नहीं मानता वो, पहले ही बोले कि मैं ओझा हूँ, मैं तुम्हारा भूत उतार रहा हूँ और कुछ एक्टिंग की है, भूत उतारने की ओझा जैसे करते हैं, मंत्र पढ़े हैं, फूक मारते हैं, फिर उसको मारते हैं शरीर में, अपना हाथ मारते हैं, जिस तरह से कर करके फिर बोले। मछुआरे ने उत्तर दिया मैंने महाप्रभु को कई बार देखा है किंतु वे ये नहीं है, ये शरीर तो बहुत विकृत है। मछुआरा क्या बोला? ये तो बिल्कुल विकृत शरीर है ना। स्वरूप दामोदर ने कहा महाप्रभु का शरीर प्रेम के कारण विकृत हो जाता है, कभी उनकी हड्डियों के जोड़ अलग हो जाते हैं और उनका शरीर बहुत लंबा हो जाता है। तो स्वरूप दामोदर क्या कह रहे हैं? चिंता मत करो, महाप्रभु ही हैं, क्योंकि प्रेम में क्या होता है उनका ऐसा हो जाता है। ये सुनकर मछुआरा बहुत प्रसन्न हुआ, बड़ा प्रसन्न हुआ, बहुत प्रसन्न हुआ कि उसको कितना बड़ा लाभ हो गया। अब प्रसन्न हो रहा है। उसने अपने साथ सारे भक्तों को ले जाकर उन्हें श्री चैतन्य महाप्रभु का स्थान दिखलाया। महाप्रभु भूमि पर लेटे थे, उनका शरीर लंबा और जल से सफ़ेद रंग का हो गया। रात भर पानी में रहे तो क्या हो गया? पूरा शरीर सफ़ेद हो गया, पूरा शरीर सफ़ेद हो गया, और वे सिर से पांव तक बालू से सने थे। पूरा बालू बालू, पूरे शरीर में बालू लगी है। महाप्रभु का शरीर लंबा हो गया था, उनकी चमड़ी ढीली होकर लटक रही थी, उन्हें उठाकर लंबी दूरी तक घर ले जाना असंभव था। उठाना भी संभव नहीं, पूरा पूरा ढीला ढाला शरीर। कई लोग मिलकर के भी उठाएं तो कैसे उठाएं, लटक रहे हैं सब जगह से लटक रहे हैं ना। उठा करके ले जाना असंभव था। भक्तों ने उनका गीला कौपीन हटाया, उसके स्थान पर सूखा कौपीन पहनाया। तब उन्होंने महाप्रभु को उत्तरी वस्त्र पर लिटाकर उनके शरीर की बालू हटाई। उठा नहीं सकते, उनको ले नहीं जा सकते। अब क्या किया? सबों ने महाप्रभु के कान में कृष्ण का उच्च स्वर से पवित्र नाम लेकर संकीर्तन किया। क्या किया? कान में ऊंचे स्वर में संकीर्तन किया। कुछ समय के बाद महाप्रभु के कान में पवित्र नाम की ध्वनि प्रविष्ट हुई तो वे उच्च ओंकार करते हुए तुरंत उठ खड़े हुए, तुरंत खड़े हो गए। उठते ही खड़े होते ही हड्डियां सही स्थानों में आ गईं। महाप्रभु ने अर्ध बाह्य चेतना से धुरधर देखा। अब बाहरी चेतना है लेकिन आधी चेतना, अब देख रहे हैं कि मैं कहाँ हूँ। चेतना महाप्रभु आधी चेतना है उनकी बाहरी है, और देख रहे हैं इधर उधर देख रहे हैं। महाप्रभु सभी समय चेतना की तीन दशाओं पर रहते थे, या तो अंतः चेतना या बहिर्चेतना या अर्ध बाहरी चेतना, तीन दशाएं। या तो अंतः चेतना, अंतः चेतना में वो कृष्ण की लीला में प्रवेश कर गए, वो कृष्ण की लीला में है, शरीर तो उनका यहीं पड़ा है, वो कृष्ण की लीला में प्रवेश कर गए, अंतः चेतना। और बाहरी चेतना तो सबकी तरह जैसे हमारी भी है, तो आसपास सब देखते हैं जानते हैं। और अर्ध बाहरी चेतना, अर्ध बाहरी चेतना में समझ में नहीं आ रहा कि मैं कहाँ आ गया। जब महाप्रभु अंतः चेतना में गंभीरता से मग्न रहते हुए भी कुछ बाहरी चेतना प्रदर्शित करते थे, तो भक्त उनकी दशा को अर्ध बाह्य दशा कहते हैं। इसको कहते हैं अर्ध बाह्य दशा। जब समझ में नहीं आता है कि मैं कहाँ आ गया हूँ। इस अर्ध बाहरी चेतना में चैतन्य महाप्रभु उन्मत्त की तरह बातें करते थे, भक्तगण उन्हें आकाश से बातें करते स्पष्ट रूप से देख सकते थे। उन्होंने कहा, यमुना नदी को देखकर मैं वृंदावन चला गया। अब चैतन्य महाप्रभु को जो याद आ रहा है तो बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं, मैं यमुना नदी को देखा था मैंने। अब यहाँ तो यमुना नदी है नहीं, जगन्नाथपुरी में यमुना नदी है, वहाँ पर क्या है, समुद्र है। तो समुद्र का गहरा पानी जो है यमुना जी जैसा काला काला लगता है। तो चैतन्य महाप्रभु याद आ रहा है कि यमुना नदी को देख करके मैं वृंदावन चला गया, वृंदावन चला गया। वहाँ नंद महाराज के पुत्र को जल में क्रीड़ा करते देखा, और वो कृष्ण की लीला में प्रवेश कर गए। वास्तव में भगवान कृष्ण राधा रानी इत्यादि गोपियों के साथ यमुना जल में थे, लीलाएं कर रहे थे। ये लीला गोपियों के साथ यमुना के किनारे मैं खड़े होकर के देख रहा था। एक गोपी दूसरी गोपियों को राधा और कृष्ण की जल लीला दिखला रही थी। तो ये सब जो है विस्तार से चैतन्य महाप्रभु वर्णन करते हैं कि कितना मतलब उन्होंने देखा। ऐसी अद्भुत लीलाएं करने के बाद भगवान कृष्ण अपने सभी प्रिय गोपिकाओं को साथ लेकर यमुना नदी के किनारे पर आ गए। तब नदी के किनारे खड़ी गोपियों ने कृष्ण तथा अन्य गोपियों के शरीरों पर सुगंधित तेल मलकर आमल की फल का लेप लगाकर सेवा की। तब पुनः स्नान किया सबने, फिर सूखे वस्त्र पहनने के बाद छोटे से रत्न मंदिर में गए, जहाँ वृंदा ने सुगंधित फूलों, हरी पत्तियों, अन्य सभी प्रकार के आभूषणों से सजाकर उनकी वेशभूषा बनाई, राधा कृष्ण को सजाया। वृंदावन में लक्ष्य लताएँ अद्भुत हैं, राधा कृष्ण के पास जो है सब दासियाँ गोपियाँ फल फूलों को तोड़ करके लाई। गोपियों ने सारे फलों के छिलके उतारे, रत्न मंदिर के चबूतरे पर बड़ी बड़ी थालियों में लाकर रखे, खाने के लिए फलों को पंक्तियों में सजाया और सामने बैठने के लिए आसन बनाया। तो ये सब वर्णन कर रहे हैं चैतन्य महाप्रभु की, मैं तो वो था। अब सोचिए, उनका शरीर तो समुद्र में पड़ा हुआ है और कितने संकट में है, और वो कहाँ पर देख रहे हैं कि लीला में कितने सुरक्षित हैं, लीला में वो कृष्ण की लीला देख रहे हैं। फिर मैंने जब देखा कि गोपियाँ राधा कृष्ण पर पंखा झल रही हैं, उनके कोई पाँव दबा रही हैं, कुछ खिला रही हैं, राधा कृष्ण सो गए, सारी गोपियाँ लेट गए, मैंने ये देखा तो मेरा मन बहुत आनंदित हुआ। एकाएक तुम लोगों ने घोर शब्द उत्पन्न किया। चैतन्य महाप्रभु क्या कह रहे हैं, अचानक तुम लोगों ने घोर शब्द उत्पन्न किया और मुझे उठाकर यहाँ ले आए। चैतन्य महाप्रभु क्या कह रहे हैं, मुझे उठा करके ले आए यहाँ, मुझे उठा करके यहाँ ले आए, तुमने एकदम से बड़ा घोर शब्द पैदा किया और मुझे उठा करके यहाँ ले आए। अब यमुना नदी कहाँ है वृंदावन, कहाँ है कृष्ण गोपियाँ, तुम लोगों ने मेरे इस सुख को भंग कर दिया। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं मेरे सुख भंग कर दिया। इस तरह कहते हुए चैतन्य महाप्रभु ने बाहरी चेतना में पूरी तरह से लौट आए। स्वरूप दामोदर गोस्वामी को देखकर महाप्रभु ने पूछा, तो मुझे यहाँ क्यों ले आए। तब स्वरूप दामोदर ने उत्तर दिया, आप समुद्र को यमुना नहीं समझकर उसमें कूद पड़े थे, आप समुद्र की लहरों से इतनी दूर भागकर लाए गए। इस मछुआरे ने आपको अपने जाल में पकड़ा और जल से आपको बचाया, और वो आपका स्पर्श करने से कृष्ण के प्रेमावेश में पागल हो गया है। हम लोग आपको रात भर खोजते रहे, इस मछुआरे से सुनकर हम यहाँ आए और आप हमें मिल गए। अब स्वरूप दामोदर बता रहे हैं तो चैतन्य महाप्रभु समझ आ रहा है कि घटना क्या हुई। जब आप बाहरी रूप से अचेत थे तभी आपने वृंदावन में लीलाएं देखी, किंतु हम लोगों ने आपको अचेत देखा तो हमारे मन में बहुत पीड़ा हुई। आप तो बहुत सुखी हो रहे हैं, आप वृंदावन की लीला में सुख पा रहे हैं, और हम बहुत दुख पा रहे हैं कि आप बेहोश पड़े हैं। किंतु जब हम लोगों ने कृष्ण के पवित्र नाम का उच्चारण किया तो आपको अर्ध चेतना आई और हम आपको उन्मत्ति की तरह बोलते सुनते रहे। चैतन्य महाप्रभु का मैं स्वप्न में वृंदावन चला गया, जहाँ मैंने भगवान कृष्ण को सारी गोपियों के साथ रास नृत्य करते देखा। तो इस तरह से कृष्णदास कविराज कहते हैं कि मैंने चैतन्य महाप्रभु के समुद्र में गिरने की घटना का वर्णन किया है। जो भी इस लीला को सुनेगा, सुना कौन सुन रहा है, कौन नहीं सुन रहा, सुन रहा है, सुन रहे हैं? जो भी इस लीला को सुनेगा उन्हें से श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों की शरण प्राप्त करेगा। एता कहिलो प्रभु समुद्र पतन, यह जय सुने पाओ चैतन्य चरण। श्री रूप रघुनाथ के चरण कमलों की वंदना करते हुए तथा सदैव उनकी कृपा की कामना करते हुए उनके चरण चरणों पर चलकर मैं कृष्णदास श्री चैतन्य चरितामृत का वर्णन कर रहा हूँ। तो ये बड़ी सुंदर लीला है जो हम लोगों ने सुनी है, और कारण क्या है, इसमें कोई शब्द आया था, प्रेमाविष्ट, प्रेम में आविष्ट, तो प्रेम में आविष्ट है, तो प्रेम में आविष्ट है तो कैसा प्रभाव है उनका, कैसा प्रभाव है। अब आप लोगों की ओर से कोई प्रश्न है, कोई चर्चा, या मैं प्रश्न करूं, आपका प्रश्न।
धन्यवाद। जैसे आपने बताया कि जैसे कि चैतन्य महाप्रभु जी को किसी ने छुआ तो फिर उसके अंदर प्रेम आ गया, फिर वो दूसरे गांव में जाता था, वहाँ पर किसी को हाथ लगाता था उस पर प्रेम आ जाता था, फिर वो आगे जाता था दूसरे गांव में जाता था, वहाँ हाथ लगाता था प्रेम आ जाता था, तो एक चेन रिएक्शन बन गया पूरा, मतलब ये कभी
सबको सुनाई पड़ रहा है, नहीं जोर से बोलो माइक पर, जोर से बोलो।
तो ये कभी मतलब चेन रिएक्शन कभी रुकेगा तो नहीं कभी,
चेन,
हाँ जो ये चेन रिएक्शन है, मतलब कि मैंने हाथ लगाया आपको तो वहाँ पर प्रेम आ गया, फिर उसने किसी को हाथ लगाया वहाँ प्रेम आ गया, तो मतलब ये तो मल्टीप्लाई होता रहेगा होता रहेगा होता रहेगा होता रहेगा। तो मतलब उस तरीके से देखें तो इस टाइम मतलब बहुत ज़्यादा संख्या होनी चाहिए ऐसे लोगों की,
जिनके इस समय तक वो फिर हुआ क्या, उसके बाद फिर क्या हुआ, आलिंगन करना बंद हो गया, जो लोग थे वो तो भगवान के धाम चले गए, है? फिर बाद में आलिंगन करना बंद हो गया, तो लेकिन असंख्य उस समय कितने लोग जो है मतलब कितना लोगों का उद्धार कर दिया चैतन्य महाप्रभु ने, इसको समझना। अब वो परंपरा अब नहीं है, आलिंगन करने की परंपरा वो जानते भी नहीं थे ना कि कैसे हो रहा है क्या हो रहा है, ऐसा चैतन्य महाप्रभु को सिखाया नहीं था कि तुम आलिंगन करो उसका तो उसको भी प्रेम मिल जाएगा, वो तो जो है प्रेम में वो किसी वाले घन करें तो उसको प्रेम मिल जाए। तो ये सब जो है एक ऐसी अज्ञात घटना के रूप में हुआ, आश्चर्य हुआ, बहुत आश्चर्य, लेकिन किसी को पता नहीं चलता है, किसी को पता नहीं है कि क्यों हो रहा है कैसे हो रहा है, है ना। अब छूने से किसी को करंट लगा, लगता भाई हाँ मैं छुआ मैंने करंट लगा, लेकिन यहाँ पर पता नहीं चल रहा है कि वो छूने से हो रहा है, हो रहा है छूने से पता नहीं चल रहा है, और ऐसा कोई सिस्टम बना ही नहीं कि भाई छुए और उनको छूने का जो है एक सिस्टम बना दिया ये भी छू और प्रेम मिल जाएगा। तो तरीका जो है किसी को पता नहीं। हाँ जी, माइक माइक माइक
मछुआरा
चालू है, आप बोलो।
मछुआरा प्रेमाविष्ट है फिर भी उसको भौतिक दर्द सता रहा था, तो समझ
नहीं। हाँ वही तो मतलब है, जैसे कि बच्चे के हाथ में मान लो 100 का नोट दे दें तो वो सोचेगा ये कहाँ है, तो मुझे और रंगीन कागज़ दे दो तो वो ज़्यादा अच्छा है, ये 100 का नोट गंदा है क्या करूँगा मैं, तो उसको जो है वो लग रहा है कि ये तो बेकार है मेरे लिए, मेरे किस काम का है, क्योंकि वो नहीं जानता ना महिमा, तो मछुआरा है मछली मारने वाला क्या जाने किसने प्रेम की महिमा। तो यहाँ पर ये बात समझ नहीं थी, लेकिन बाद में समझ आया उसको, लेकिन शुरू में कैसे समझ आया। एक बच्चे को आप 100 करोड़ दोगे, 1000 करोड़ दोगे, क्या समझेगा वो नहीं समझेगा, है ना। हाँ जी
हरे कृष्ण जी, पहले तो धन्यवाद, इतनी अच्छी आपने एक लीला, मधुर लीला आपने आनंद प्रदान किया, हमारे हमारे को भी प्रेम में आपने इंक्लूड कर दिया प्रभु जी। तो प्रश्न ये था प्रभु जी कि जैसे आपने कहा कि भगवान जो है अर्धभाव्य अवस्था में थे, मतलब एक भगवान स्वयं होकर वो कैसे अर्धभाव्य, मतलब एक वो स्वप्न में एक महावृंदावन थे पहुँचे थे या एक्चुअल में वो वृंदावन में।
इनका सब प्रश्न है कि भगवान है, सर्वज्ञ हैं, तो वे तो उनका तो ज्ञान कभी ठकता नहीं है, फिर ऐसा कैसे है। भगवान में अचिंत्य गुण है, भगवान में अचिंत्य गुण है, और जब भगवान प्रेम का रसास्वादन करना चाहते हैं तो ऐसी अवस्था भी उनकी होती है, ठीक है ना। ये अचिंत्य गुण है उनका, तो उनमें अज्ञान तो है ही नहीं, लेकिन तो भी हाँ अगर वो चाहें तो उस अवस्था में आ जाते हैं ने? कि वे नहीं जानते। इसलिए भागवत में भी बताया है कि साधवो हृदयम मह्यम साधु नाम हृदयम तो हम मदन्य तेना जानती ना हम तेभ्यम ना गति। ये साधु मेरे हृदय हैं, मैं साधु के हृदय हूँ, मदन्य तेन मेरे अलावा भी कुछ नहीं जानते हैं तो मैं भी उनके अलावा कुछ नहीं जानता, तो ऐसा भी है। तो ये सब अचिंत्य गुण है उनके, ठीक ना। और कोई प्रश्न? मैं प्रश्न करूँ? ठीक है, मैं प्रश्न कर रहा हूँ। तो जब चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत की यात्रा में गए हैं तो कितने समय के लिए गए थे? 6 वर्ष के लिए गए थे। 6 वर्ष के लिए गए थे, और चैतन्य महाप्रभु से प्रेम करने वाले जो भक्त थे, जगन्नाथपुरी में रहते थे, वो कैसा प्रेम करते थे? प्राण उनका जैसे प्राण, और चैतन्य महाप्रभु गए, है ना, और किसी केवल एक व्यक्ति को साथ में लेके गए, किसी को साथ में लेके नहीं गए। क्यों? कि तुम मुझसे इतना प्रेम करते हो तो मेरी मुझे जो असुविधाएं होंगी तो तुम्हें बहुत कष्ट मिलेगा, इसलिए मत जाओ मेरे साथ, सबको मना कर दिया कि तुम मुझसे इतना प्रेम करते हो तो तुम सहन नहीं कर पाओगे मुझे, क्योंकि मैं कैसे रहूँगा, अकेले पैदल चलना है और कहीं पर सोना है तो ज़मीन में ही सोना है, कैसे है और क्या खाऊंगा, तो तुम सहन नहीं कर पाओगे इसलिए मेरे साथ मत चलो, तो सबको मना कर दिया। और ऐसे व्यक्ति को लेके गए जिसके अंदर प्रेम ना हो, ऐसे व्यक्ति को ले गए जिसके अंदर प्रेम नहीं है, काला कृष्णदास को ले गए हैं, उसको लेके जाएंगे, है ना। अब कैसा लगेगा, सब प्रेमी भक्त को कैसा लगेगा, है ना। और उस दिन उन दिनों कोई समाचार तो मिला होगा ना चैतन्य महाप्रभु का बीच में, है मिला होगा समाचार, है क्यों, मोबाइल से है? मोबाइल था नहीं था ना, मोबाइल क्या था, चिट्ठी, चिट्ठी पत्री है, पोस्टल डिपार्टमेंट क्या था, कोई उपाय था जानने का है? 6 साल तक कहाँ हैं कहाँ नहीं हैं, कहाँ सो रहे हैं कहाँ नहीं सो रहे हैं, कैसी स्थिति दुर्दशा है, कहाँ पर है, कैसी है, कुछ पता नहीं है ना। ये जो है मतलब उन दिनों ये हाल था। कोई व्यक्ति घर से अगर निकल गया है और घर भूल जाए, घर का रास्ता भूल जाए है, तो हो सकता है जीवन भर घर ही ना आए। अगर मान लीजिए अपने गांव का नाम भी भूल गया तो फिर वो आ ही नहीं सकता अपने गांव, किसको बताएगा, क्या बताएगा। घर से बाहर निकल जाए और मान लो रास्ते उसके पते भी हैं, लेकिन रास्ते में कोई मार डाले उसको तो समाचार भी नहीं मिलेगा कि कहाँ उसका शरीर छूट गया। तो उन दोनों इतना अभी तो क्या है, रोज़ खबर मिलती है मोबाइल से, आप कहीं जाते हैं मोबाइल से बात करते हैं, मैसेज भेज देते हैं, है ना। तो कई उपाय हैं संचार के, बहुत से माध्यम हैं, उन दोनों कोई माध्यम नहीं था। और जब चैतन्य महाप्रभु आए तो जगन्नाथपुरी उनको आना था, तो जगन्नाथपुरी नहीं आए, कहाँ पर आए, रास्ते में अलालनाथ पड़ा, वहाँ पर आए। तो वहाँ से उन्होंने फिर क्या क्या किया, संदेश भेजा किसके हाथों? काला कृष्णदास ने संदेश भेजा कि सब लोग आए मुझे लेने के लिए, सब लोग आए लेने के लिए। क्यों सब लोग आए लेने के लिए? अच्छा रहेगा, अच्छा रहेगा लेने के लिए आए, है ना। अगर चैतन्य महाप्रभु आ जाए जगन्नाथपुरी, है ना, तो वो जो है उतना अच्छा नहीं है। वो हलालनाथ हैं और सब लोग जाएं तो कैसे गए सब भक्त लोग, हैं पैदल गए, नाचते नाचते गए, नृत्य करते करते गए, नृत्य किया, है ना, सब नृत्य करते करते गए हैं उनको लेने के लिए। ये चैतन्य महाप्रभु रोक नहीं सकते थे, चल पड़े तो बीच रास्ते में मिले, बीच रास्ते में मिले, है ना। तो प्रेम का जो है ये प्रेम की लीला है, चैतन्य महाप्रभु की ये लीला जो है प्रेम की है। उनको प्रेम पुरुषोत्तम कहा जाता है, कृष्ण को लीला पुरुषोत्तम कहा जाता है, राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है, और चैतन्य को प्रेम पुरुषोत्तम कहा जाता है। क्योंकि उनकी लीला प्रेम ही प्रेम है, प्रेम के अलावा कुछ है ही नहीं। ठीक है, धन्यवाद।